वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपदेशामृत के दूसरे श्लोक की चर्चा चल रही है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो अगला जो दोष है वो नियमाग्रह है, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की टीका में नियमाग्रह के पहले जनसंघ की चर्चा होती है, इसलिए हम जनसंघ की चर्चा करेंगे। हालांकि श्लोक में क्रम से नियमाग्रह पहले है, फिर भी हम जनसंघ की चर्चा अब शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़िएगा। जनसंघ का अर्थ है, वहां से शुरू होके,
जनसंघ का अर्थ है कृष्ण महानामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में भक्त सने वास कहने रहने का उपदेश दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती है। इसी प्रकार हमने कृष्ण वाणामृत का अंतरराष्ट्रीय संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करेगा कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त यह आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं।
ठीक है, तो जनसंघ के बारे में जो प्रभुपाद ने बातें कही हैं, संक्षिप्त में यहाँ चार्ट में है। जनसंघ कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वालों की संगति करना, ये जनसंघ है, ये दोष है। तो जो भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों का संग करने से हमारे भक्ति में हानि पहुंचती है। दूसरी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। उदाहरणार्थ स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि। ये जो संघ का सिद्धांत है, ये तो सारे जगत में दिखाई जा रहा है। किसी एक उद्देश्य के पूर्ति के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि संघ में शक्ति है। तो यदि व्यापारी हैं तो एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले लोग इकट्ठे आ जाते हैं, ताकि उनके व्यापार में कोई खतरा हुआ, कोई धोखा हुआ, कोई समस्या हुई, तो इकट्ठे आकर वो समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो ऐसे भौतिक क्षेत्र में हर जगह देखा जाता है। तो ये संघ का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संघ और संघ, संघ क्या होता है? एक संघटना बनाना जिसमें कि हमें संघ मिल सके। संघम शरणम गच्छामि है ना, बुद्ध देव का वो धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध लोग ऐसे बोलते हैं ना संघ, तो बौद्धों के लिए संघ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, जिस संघ में हमें संघ मिलता है। किस प्रकार का संघ? भक्तों का संघ। तो यही सिद्धांत है जो सब जगह देखा जाता है। लोग संघ बनाते हैं, जैसे जो आलू बेचते हैं या सब्जियां बेचते हैं मार्केट में, उनका भी कोई संघ होता है। जो कपड़े के व्यापारी होते हैं उनका संघ होता है। जो ये ट्रक और लॉरी में ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम करते हैं उनका संघ होता है। सरकार ने कुछ कर बढ़ा दिया तो सारे वो संघ एक हो जाएंगे, नाराबाजी करेंगे, है ना। तो अपने हित के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक संघ बनाते हैं। तो जैसे भौतिक क्षेत्र में पाया जाता है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं आगे, उसी प्रकार इस्कॉन स्थापित करने का उद्देश्य है लोगों को कृष्ण भक्तों की संगति का अवसर प्रदान करना। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था क्यों बनाई है? कृष्ण भक्तों का संग प्रदान करने के लिए श्री प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्थान बनाई है। तो नहीं, अलग है। प्रश्न ये है कि संघ और संघ ये एक ही शब्द है या अलग शब्द है, कौन बताएंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, संघटना। तो संघ भी होता है संघ के लिए ही, उस प्रकार के संघ के लिए। तो एक प्रकार की संस्था जब होती है तो उसे संघ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था क्यों बनाई? संघ के लिए। किसके संघ? कृष्ण भक्तों का संघ देने के लिए। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, उपदेश अमृत श्लोक 4 में भक्तों के बीच प्रेम के आदान प्रदान के 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है। जब हम कृष्ण भावनाहीन लोगों के साथ 6 प्रीति लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं तो यह जनसंघ कहलाता है। चौथे श्लोक में ये प्रीति लक्षणों का वर्णन होगा ना, कौन से हैं वो प्रीति लक्षण भक्तों के बीच में? ददाति, प्रतिगृहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव, षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो भक्तों के बीच में ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। कौन से हैं? इनको साधारण शब्द में बोलिए, पहला कौन सा है श्रीकांत सेन प्रभु? ददाति, प्रतिगृहणाति, क्या करना चाहिए, क्या ले उपहार, कोई प्रेम का उपहार लेना और देना। गोविंद कुंड प्रभु आगे क्या मतलब? उनके हृदय की बात सुनना और अपने हृदय की बात सुनाना। और गोविंद प्रभु फिर भुंगते भोजयते, क्या मतलब? उनसे भोजन स्वीकार करना और भोजन खिलाना, तो ये प्रेम के लक्षण होते हैं बाहर की दुनिया में भी। तो यदि ये छह चीजें हम अभक्तों के साथ करते हैं तो ये जनसंग कहलाता है, तो ये दोष है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए किसी अभक्त के साथ में जाता है या उसके साथ बोलता है तो वो जनसंग नहीं कहलाता है। समझ लीजिए कि एक व्यापारी है, कृष्ण भक्त है, जब व्यापार करता है तो उसके ग्राहक कितने सारे आ सकते हैं जो भक्त नहीं है, उनके साथ में बातचीत करना पड़ता है, और अन्य व्यापारियों से वो चीजें खरीदता है उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जनसंग कर रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यदि उस संघ में उन लोगों के साथ बातचीत करने में और आदान प्रदान करने में उसके व्यवहार में स्नेह है उनके प्रति, तब वो जनसंघ कहलाएगा। तो जहां एक स्नेह आ जाता है, एक प्रेम आ जाता है, वो संघ कहलाता है, जनसंघ। जैसे भक्तों के बीच में रहते हुए भी ये छह प्रेम के लक्षण है ना, जो अभी अभी चर्चा किए, षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम अभक्तों के साथ में उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं और केवल हमारे कर्तव्य की पूर्ति के लिए करते हैं तो वो जनसंग नहीं है। परंतु यदि हम ऐसे कर्तव्यों को करते करते उसमें आनंद भी लेते हैं, थोड़ा स्नेह भी है उनके प्रति, तो फिर ये जनसंघ का दोष हमारे अंदर आ जाता है और ऐसा संघ हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। आप समझ रहे हैं? नीलेश अभी बताओ, हमने क्या बताया?
अगर कोई व्यापारी है तो उसके साथ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो सिर्फ उनसे जो वार्तालाप करके या उससे जो लेन देन करना और करके उन्हें छोड़ देता है तो जनसंघ नहीं है, पर जब वो उनके प्रति स्नेह प्रदर्शित करता है तो जनसंघ कहलाता है।
तो जनसंघ ये दोष है कि नहीं है?
उनसे स्नेह अगर हो गया क्योंकि वो भौतिक आदमी है तो ये दोष है।
हाँ, तो जनसंग जहां यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं शब्द अभक्तों के साथ संग करना, तो ये दोष है। तो यदि अभक्तों के साथ बातचीत करते हुए हम उस संग में आनंद लेते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा स्नेह है, तो फिर ये एक दोष हो जाता है, जनसंग का दोष, जो कि हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि जनसंग या संसारी लोगों का संग जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। सात प्रकार के जनसंग होते हैं। ये जनसंग और जनसंघ ये भी अलग है। हाँ हाँ प्रश्न ये है कि पूर्वाश्रम में जो मित्र रहते हैं उनके साथ में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उस हद तक वो जनसंघ हो जाता है। थोड़ा आनंद लेते हैं पुराने चीजों में तो आनंद हो जाता है, तो जनसंघ हो जाता है। यदि आप प्रचार करने के लिए उनके साथ थोड़ा कुछ बातचीत कर रहे हैं तो फिर ठीक है, आपका उद्देश्य है कि उनको धीरे धीरे हम भक्त बनाएं और इसलिए उनके साथ बर्ताव थोड़ा ठीक रखना है, तो फिर ठीक है। परंतु आपका उद्देश्य यदि है कि उनके संग में रमण करना, आनंद लेना, जिन चीजों में वो आनंद लेते हैं उनमें हमें भी आनंद लेना है, और इसके कारण स्नेह हो जाता है उनके प्रति, तो वो जनसंग हो जाता है। व्यापार केवल एक उदाहरण दिया था हमने, हमारे पूर्वाश्रम के मित्रों के साथ भी ऐसे हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं, आपके सहयात्री बैठे हैं आपके आमने सामने, वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, आप भी बह के उनके साथ में बातचीत करने लग जाते हैं उनके विषयों में, तो वो भी जनसंघ हो जाता है। यदि केवल एक सामाजिक कर्तव्य के लिए आप थोड़ा कुछ बातचीत करते हैं ठीक ठाक, ये उद्देश्य से कि भक्तों के प्रति थोड़ी उनकी भावना अच्छी हो जाए, वो भक्ति के प्रति अनुकूल भाव रखे हैं, और ऐसे दो चार बातें आप कर देते हैं, ये आपको वास्तव में प्रचार करने का अवसर मिल जाता है, इसलिए आप बात करते हैं तो ठीक है। परंतु आप ऐसे ही बैठे हैं और बातों में आप मिलाते जा रहे हैं और इसमें आपको बड़ा अच्छा लग रहा, आनंद लग रहा है, और आप सोच रहे वाह कितना अच्छा आदमी है, देखो सिनेमा के बारे में कितने अच्छा बातचीत कर रहा है, क्रिकेट के बारे में कितना अच्छा बातचीत कर रहा है, तो फिर ये जनसंघ हो जाता है। हाँ तो माता पिता का पुत्र के प्रति स्नेह होना स्वाभाविक है, तो पुत्र को माता पिता के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए? यदि वो भक्त है तो इतना ही, यदि वो भक्त नहीं है तो, माता पिता भक्त नहीं है तो, हाँ यदि वो ब्रह्मचारी है तो एक प्रकार का व्यवहार होगा, और वो गृहस्थ है तो दूसरे प्रकार का व्यवहार होगा, और बीच में है तो तीसरे प्रकार का व्यवहार होता है। तो परिस्थिति के हिसाब से देखना चाहिए, है ना? लेकिन मूल सिद्धांत ये है कि चाहे हम किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो, पहली बात हमें ये देखनी चाहिए कि हमारे भक्ति के ऊपर कोई नुकसान ना हो, हमारी श्रद्धा में ठोस पहुंचे नहीं, ये हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, अपनी भक्ति की रक्षा करते करते जितना हो सके उनके साथ हमें बर्ताव ठीक रखना चाहिए। ज्यादा क्रूर बनने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कठोर बनने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सिद्धांत है अपने भक्ति की रक्षा करना, और साथ साथ हो सके तो उनको भी भक्ति में आगे ले जाना, यदि हो सके तो। लेकिन उनको आगे भक्ति में बढ़ाते बढ़ाते हमारी भक्ति के ऊपर यदि नुकसान हो रहा है तो फिर हमें सावधान रहना चाहिए, ठीक है? हरे कृष्ण। और हाँ उत्तम श्लोक प्रभु आपको बोल रहे थे। तो आपका प्रश्न है कि जो अन्य आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, भक्ति का अनुसरण करते हैं, उनका लक्ष्य अलग है, तो फिर वो भक्ति कैसे कर रहे हैं? नहीं, यदि उनका लक्ष्य अलग है तो भक्त नहीं कहलाएंगे ना, भले वो अपने आप को भक्त कहें, लेकिन हम जानते हैं कि उनका लक्ष्य भक्ति का नहीं है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा तो श्रील रूप गोस्वामी ने दी है, तो यदि उस सिद्धांत के अनुसार उनकी उनका लक्ष्य नहीं है तो भले वो अपने आप को भक्त माने, लेकिन हम उनको भक्त नहीं मान सकते। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम सीधे जाके कहें हम आपको भक्त नहीं मानते हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी जनसंघ कहलाता है और इन श्रेणियों में आएगा, आगे चल के हम देखेंगे। और भक्तों के बीच में भी श्रेणियां होती हैं, हम देखेंगे उसके बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 7 प्रकार के जनसंघ होते हैं। पहला है मायावादी एवं नास्तिक, इनका संघ। मायावादी कौन होते हैं, कौन समझाएंगे? अयन गौड़ा, मायावादी कौन है? जो माया में है वो मायावादी, सही है?
जो लोग भगवान का अवतार को निराकार समझते,
भगवान के अवतार को निराकार समझते हैं और कुछ ठीक ठाक और स्पष्ट कुछ। हाँ दुर्गा प्रसाद, जो भगवान के रूप गुण लीला धाम नाम आदि को सत्य नहीं समझते हैं और क्या मतलब इसका, और जीव को भी क्या समझते हैं, वो जीव को भी परब्रह्म समझते हैं, इस जगत को मिथ्या समझते हैं, तो ऐसे लोग मायावादी कहलाते हैं। और नास्तिक लोग कौन होते हैं, चल जो भगवान को नहीं मानते हैं और जो वेदों को या शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों का संग हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम उनका संग करें तो ये जनसंग कहलाता है। अच्छा ये बताइए, हमें कहा गया है कि सन्यासी जो है वो हमारे सम्मान के पात्र होते हैं और मायावादी से हमें दूर रहना चाहिए, तो फिर मायावादी सन्यासी आए तो हमें क्या करना चाहिए भद्रसेन प्रभु? और इतना ही उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। हाँ सम्मान करना चाहिए परंतु संग नहीं करना चाहिए। तो सम्मान क्यों करना चाहिए यदि संग नहीं करना है तो? हाँ उस सन्यास आश्रम के प्रति हम सम्मान प्रकट कर रहे हैं, वो वैराग्य के जो लक्षण है उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो मायावादी और नास्तिक इन दोनों का हमें संग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भोगी सेंस एंजॉयर, तो भोगी वो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं जो भोग से अधिक आसक्त हैं, इनमें से दो प्रकार होते हैं। एक है, वैसे ये पूर्ण नहीं है, भोगी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते और दूसरे होते हैं भक्त। जो भक्त भोगी है वो ठीक है, भक्त भी है और भोग भी करना चाहते हैं। तो जो दो है हमारे सामने, समझो कि दुनिया में तीन ही लोग हैं, हम हैं, एक भोगी है जो भक्त नहीं है और दूसरा भक्त है जो थोड़ा भोग करता है, हम तीन ही लोग सारे दुनिया में हैं, तो किसका संग करना चाहिए? जो भगवान का भक्त है भले वो भोग कर रहा हो उसका संग करना चाहिए, और जो नास्तिक भोगी है या जो भगवान का भक्त नहीं है उसका संग त्यागना चाहिए। तो दोनों में से उसका संग करना चाहिए जो भक्त है, फिर भी इतना नहीं करना चाहिए वास्तव में, क्योंकि उसकी भोग प्रवृत्ति का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जनसंघ के अंतर्गत बताया है कि यदि कोई भक्त भी हो परंतु थोड़ा भोगी है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, लेकिन अधिक संग नहीं करना चाहिए, तो उसकी भोग वृत्ति जो है वो हमें प्रभावित कर सकती है। तो जो भक्त हैं जो इंद्र तृप्ति करना पसंद करते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। एक है जो भोग से अधिक आसक्त हैं, या जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्र तृप्ति का भाग बनाया है, और जो भोग से आसक्त हैं, जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्र तृप्ति का केंद्र बिंदु बनाया है। तो ये सूक्ष्म अंतर है इन दोनों में। एक है जिसमें वो भगवान को बीच में रख के भगवान का नाम लेते लेते भी भोग कर रहा है, और दूसरी बात भगवान को केंद्र बिंदु बना के बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करता है, जैसे बहुत ज्यादा प्रसाद खाना, बहुत ज्यादा कुछ करना, कृष्ण किससे संबंधित है, हम पहले सुन चुके हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रसाद भी लेना ये उदर वेग और जिह्वा वेग के वश में आने की बात है। तो भले भक्ति मार्ग में भी कोई व्यक्ति हो लेकिन भोग से आसक्त हो तो उनसे भी संग ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर तीसरी श्रेणी है जो लोग भोगियों से प्रेम करते हैं, इनका भी संग नहीं करना चाहिए, ये भी जनसंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी जल्दी ही भोगी हो जाएगा। जो भोगियों से प्रेम करता है वो व्यक्ति शीघ्र ही स्वयं भोगी बन जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। अगर कोई व्यक्ति भोगियों का संग करता है तो उनके संग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा। फिर अगले हैं स्त्री संग, ये भी जनसंग कहलाता है क्योंकि इससे हमारी भक्ति के ऊपर हानि पहुंच सकती है। हाँ, जितना सेवा के लिए आवश्यक है केवल उतना ही हमें संग करना चाहिए, लेकिन वो फिर जनसंग नहीं कहलाता है। यदि सेवा के अतिरिक्त या सेवा के बहाने हमारा उद्देश्य कुछ और होते हुए हम यदि करते हैं तो वो जनसंग कहलाता है। यदि हमारा उद्देश्य है सूक्ष्म या स्थूल रूप से भोग करना तो फिर वो जनसंग कहलाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो स्त्री संगी हैं उनका भी संग हमें त्यागना चाहिए। स्त्री और स्त्री संगी दोनों। और अंत फिर है कपटी वैष्णव, इनको धर्म ध्वजी कहते हैं। धर्म ध्वजी अर्थात जो केवल नाम के लिए धर्म का पालन करते हैं, दिखाने के लिए, नाम के वास्ते, परंतु वो हैं भोगी या कुछ और ही हैं। जैसे इस श्रेणी में आते कई लोग जो बड़े बड़े गुरु के पद में हैं बाहर, जो भक्त नहीं हैं, और कोई उनके पास सिद्धि है, वाक सिद्धि है, किसी कोई को और कोई योग सिद्धि है, और ऐसे उनका चरित्र इतना प्रभावशाली है कि उनके लाखों अनुयायी हो जाते हैं और उनको वो भक्ति का सिद्धांत नहीं सिखाते हैं, तो ऐसे लोग धर्मध्वजी कहलाते हैं। सही धार्मिक सिद्धांतों का पालन स्वयं नहीं करते और दूसरों को सिखाते नहीं है, और केवल इंद्र तृप्ति के लिए सूक्ष्म या स्थूल रूप से वो अपने पद को स्वीकार करते हैं। कपटी वैष्णव, कपटी मतलब वो धर्मध्वजी, दिखाने के लिए अपने आप को वैष्णव दिखाता है या कोई भक्त दिखाता है लेकिन है नहीं वास्तव में। नहीं नहीं, कपटी मतलब ये उद्देश्य का अंतर होता है। जब हम कपटी कहते हैं तो उद्देश्य अलग होता है। यदि कोई भक्त सिंसियरली अपनी भक्ति कर रहा है परंतु उसके पूर्व भौतिक संग के कारण उसकी जो संस्कार हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, और इसलिए कभी कभी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं मन में आती हैं और बीच बीच में उसका पतन हो भी जाता है न चाहते हुए भी, लेकिन है वो सिंसियर, वो भगवान कृष्ण की प्रेम और भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वो कपटी वैष्णव नहीं कहलाता। लेकिन जो जानबूझकर दिखावे के लिए नाम के वास्ते अपने आप को कोई धार्मिक व्यक्ति कहलाना चाहता है समाज में, कभी कभी गुरु भी बनता है, तथाकथित गुरु बनता है लोगों का, धर्म के बारे में बड़े बड़े प्रवचन भी देता है परंतु धर्म का सही सिद्धांत नहीं जानता है, ये जानते हुए भी उसके ऊपर वो सही प्रस्तुत नहीं करता अपने ही कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वो धर्मध्वजी या कपटी वैष्णव कहलाता है। और अंत में है दुराचारी मूर्ख, निम्न कोटि का व्यक्ति। जैसे कोई वर्णाश्रम के निम्न से नीचे ही हैं बुरी आदतों से वो आ सकते हैं, शराब पीने में, इसमें उसमें गंदा जीवन जीते हैं, उनकी भाषा सही नहीं होती है, असंस्कृत होते हैं, तो ऐसे लोगों का संघ भी जनसंघ कहलाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये सात प्रकार के जनसंघ हैं, और ऐसे जनसंघ करने से हमारे भक्ति में हानि पहुंचती है। ठीक है, फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी अब विषय थोड़ा बदल रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका से अत्याहार के बारे में और कुछ मार्गदर्शन करते हैं, प्रकाश डालते हैं। हाँ, तो पढ़िएगा अत्याहार के, फिर से हम पहले की ओर जा रहे हैं। हाँ, पढ़िएगा।
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक चिंतकों या शुष्क चिंतकों ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोते के पोते लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक ग्रंथ लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं।
हाँ, तो यहाँ पर अत्याहार के और उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। क्या क्या उदाहरण है यहाँ पर अत्याहार के, कौन बताएंगे? हाँ, दुर्गा प्रसाद। हाँ, पहला उदाहरण है ज्ञानियों का। ज्ञानियों का अत्याहार कैसे होता है? नहीं, वैज्ञानिक नहीं, ये किनके बारे में चर्चा हो रही है? दार्शनिक चिंतन जो करते हैं, दार्शनिक चिंतन करने वाले, विशेष करके ज्ञान योग के पथ में चलने वाले, ये लोगों की बात हो रही है। अच्छा, ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण? हाँ, जो हाँ, जो ऐसे दार्शनिक चिंतन करने वाले लोग बहुत सारे ग्रंथ आदि लिखते हैं जो कि वास्तव में व्यर्थ हैं, इसको भी अत्याहार कहते हैं। और जो कर्मी लोग बड़े बड़े पोथी के ऊपर पोथी, आर्थिक विकास के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखते रहते हैं, वो भी अत्याहार है। और भौतिक ज्ञान है किस प्रकार? वैज्ञानिक ज्ञान। और जो उनको भक्ति में रुचि नहीं है और केवल ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्राप्त करने, संग्रह करने का प्रयत्न करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में क्यों न हो या धन के बारे में क्यों न हो, वो सब अत्याहार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अत्याहार के बारे में ये तीसरा चार्ट है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अनुवृत्ति टीका से हम जानते हैं ये अत्याहार के और उदाहरण हैं। ज्ञानियों द्वारा मानसिक तर्क के आधार पर ज्ञानार्जन एवं ग्रंथ लिखना, अनेक डिग्रियां हासिल करना, यह भी अत्याहार है। कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो धन, वैज्ञानिक ज्ञान आदि को अधिकाधिक प्राप्त करना चाहते हैं, जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, सब अत्याहारी हैं। और उदाहरण है धनी व्यक्ति जिसका अगला जन्म मोची परिवार में होता है, जिसके बारे में अब अगले परिच्छेद में हम पढ़ेंगे। तो पढ़िएगा अगला परिच्छेद। प्रश्न ये है कि क्या ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ना ये अत्याहार है? हाँ, यदि इन किताबों का संबंध भक्ति से न हो और भक्ति के हो भी तो केवल प्रतिष्ठा आदि के लिए इनको पढ़ना, न कि हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए या पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। हाँ, अगला परिच्छेद।
कर्मीजन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात को प्रत्यक्ष करने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा जो उस इमारत के पास स्थित था जिसे उसने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे।
तो क्या कथा है, क्या कहानी है गोविंद कुंड? क्या कहानी बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर और इससे हम क्या सीख सकते हैं? अभी भी छोटी सी कहानी पढ़ी ना। हाँ, एक छोटी सी कहानी अभी बताई ना प्रभुपाद ने, मुकुंद रघुनाथ प्रभु। क्या कहानी बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? किसके लिए धन संग्रह किया था उस व्यक्ति ने? बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। हाँ, फिर तुम क्या सीख सकते हैं इस कहानी से? ऐसे कृष्ण भावनाहीन अवस्था में केवल धन संग्रह करते रहना ये कितना व्यर्थ है, कितना बेकार है। तो देखिए इस बेचारे धनी व्यक्ति की दशा, अपने पुत्रों के लिए, अपने पौत्रों के लिए इतना जीवन भर परिश्रम करके धन संग्रह किया, मृत्यु के समय एक पैसा भी साथ में नहीं लेकर गए, सब पुत्रों पौत्रों के लिए रख के गए, और जब वापस आए अगले जन्म में मोची के घर में जन्म मिला और सोचा कि चलो मैं, अरे ये तो मेरे पूर्व जन्म के बच्चे हैं, पौत्र भी हैं, चलो अभी मेरा अच्छा देखभाल करेंगे। तो वहां गया और क्या हुई, क्या हुआ, उन्होंने जूते से पिटाई कर दी उसकी। ये भी स्वाभाविक है, समझ लीजिए कोई टाटा बिरला है और कोई सड़क से आकर बच्चा है, आके बोलता मैं तुम्हारा पिता हूं, कोई मानेगा? पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, कौन मानेगा? तो इसलिए उन्होंने इसकी पिटाई करके भेज दी वापस। तो सीखना ही है कि अत्याहार कितना व्यर्थ है, और व्यर्थ ही नहीं कितना दुखप्रद है। जिनके लिए हमने इतना सब कुछ किया वही हमें जूते से मारकर भगा रहे हैं। देखो सारा जीवन उनके लिए हमने बिताया, उनके सुख के लिए, न जाने कितने पाप हमने किए होंगे धन संग्रह करने के लिए, पुत्रों और पौत्रों के लिए, और इतना करके अगले जन्म में हमें पुरस्कार क्या मिलता है? जूतों से पिटाई होती है। तो ये है अत्याहार का फल। अब बात आती है नियम आग्रह की। तो नियम आग्रह और कौन पढ़ेंगे? अभी जोर से थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ नीलेश पढ़ो।
तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है, जैसा कि कुछ उपयोगितावादी उसका समर्थन करते हैं। किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम या विधि विधान जोड़ने से या संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्रुत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।
ठीक है, तो नियम आग्रह इस शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? कौन बताएंगे? अनंत पद्मनाभ प्रभु, नियम आग्रह के दो अर्थ क्या है? हाँ स्पष्ट से थोड़ा और बोले। नियम अग्रह और नियम आग्रह, तो अग्रह शब्द का अर्थ क्या है और आग्रह का क्या है? यहां लिखा है रूपा जी ने क्या? नहीं, क्या स्वीकार करना मतलब? आग्रह शब्द का अर्थ क्या है और आग्रह का क्या है? तो उपाजी बताते हैं ना यहाँ पर। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। तो किसके क्या चीजें स्वीकार करना और नहीं करना? नियम। तो दो प्रकार के नियम होते हैं, एक प्रकार के नियम को कहते हैं विधि और दूसरे प्रकार के नियम को कहते हैं निषेध। विधि और निषेध ये दो प्रकार के नियम होते हैं। विधि मतलब वो नियम जिनको हमें करना चाहिए, जिन चीजों को हमें करना चाहिए वो है विधि, और निषेध का अर्थ है वो चीजें जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो विधि और निषेध दोनों मिलाकर नियम होते हैं, और नियम का यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आतुरता से आसक्त होकर कहे करे, और यहां तक कि वो जाने भी नहीं कि ये क्यों कर रहा है, केवल नियमों का पालन करना अच्छी तरह से जानता है, परंतु नियमों का पालन करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, केवल नियम पालन ठीक ठाक कर रहा है। जैसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अपने बहुत बढ़िया गाड़ी है, सारे शहर में घूमता है, और उसके सारे गाड़ी चलाने के नियम बहुत अच्छी तरह से पता है। लाल बत्ती आएगी तो ऐसे करना, रुक जाना है, हरी बत्ती आएगी तो आगे बढ़ना है, यहां से दूसरे लाइन में जाना है तो दाएं साइड का सिग्नल देना है, बाएं साइड का सिग्नल देना है, घूमना है तो क्या इशारा करना है, लाइट का कैसे ऊपर नीचे करना है, सब बहुत बढ़िया जानता है। जब सीमा की गति होती है, गति सीमा होती है, तो उससे बढ़कर नहीं जाना। सामने से कोई आते हैं तो धीरे से जाना, फिर आगे जाना। बहुत सारे नियम होते हैं गाड़ी चलाने के लिए रास्ते में, बहुत बढ़िया ये पालन करता है। परंतु इतना ही एक समस्या है कि वो गाड़ी लेकर कहां जा रहा है उसको नहीं पता है। गाड़ी लेके जा रहा है, बढ़िया ट्रैफिक का रूल जो है पालन कर रहा है, कोई दोष नहीं, लेकिन घूम रहा है सारे बेलगाम में, इधर उधर घूमते रहता है, लेकिन कहां जाना है, क्यों जा रहा है नहीं पता। तो क्या है ये नियम? आग्रह। आग्रह नहीं, आग्रह। कैसे है ये नियम आग्रह? राममूर्ति प्रभु क्या उदाहरण, ये उदाहरण कैसे है और क्यों है? तो विधि विधानों का पालन करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है ये सब नहीं पता। दूसरी ओर कोई व्यक्ति है कि वो कहता है मुझे तो विधियों का पालन करना ही नहीं है, जो लाल बत्ती हरी बत्ती मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल गाड़ी चलाऊंगा, गाड़ी चलाने में मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़े तेज गति से मैं गाड़ी चलाऊंगा, अचानक ब्रेक मारूंगा, बहुत आवाज करूंगा। वो भी घूमते रहता है, उसको भी नहीं पता कि कहां जाना है, लेकिन वो थोड़े गाड़ी चलाने का आनंद ले रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि नौजवान लोग मोटरसाइकिल पर बैठ के ऐसे सब करते हैं ना, उनको तेज गति का जो आनंद है वो लेना अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसे कहीं खास जगह जाना नहीं चाहते, यूं ही घूमने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनको तेज गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, और उस समय वो नियम का पालन नहीं करते। विदेशों में ये एक कानून की समस्या बन गई है, वहां जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं, यहां हमारे जो हाईवे है ना ये तो फुटपाथ की तरह है, वहां के हाईवे तो इतने बड़े बड़े विशाल हाईवे होते हैं, 8-8, 10-10 गाड़ियों के लिए एक साथ यहां दूसरी साइड में, वहां बहुत कड़े नियम होते हैं। और वहां पर ऐसे नौजवान लोग हाईवे में आते हैं और कोई बिना पहचान का आदमी दूसरा आ गया, वो भी रेसिंग के लिए आ रहा है, ये भी रेसिंग के लिए गया हाईवे कि कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ हम गति की प्रतियोगिता करें, स्पर्धा करें। तो मिल जाते हैं तो इशारा कर लेते हैं अपने शुरू, और दोनों अपने गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी है चला के इतने तेज जाते हैं, कोई नियम का पालन नहीं, और बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं इसके कारण, कई लोग मर जाते हैं, क्योंकि वहां उन हाईवे में बड़े बड़े राजमार्ग होते हैं, वहां लोग बहुत तेज गति से चलाते हैं गाड़ी, गति सीमा भी उतनी ही होती है। तो ऐसे कई लोग होते हैं नियम का पालन भी नहीं करते और केवल आनंद लेने के लिए कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करना चाहते, वो कहते हैं जीवन केवल भोग करना है, हमें नियम कुछ नहीं चाहिए, हम जैसा मन में आए वैसे करेंगे, खूब आनंद लेंगे, खूब भोग करेंगे, ऐश करेंगे। तो ये है नियम अग्रह, नियमों को त्यागना, बिल्कुल कोई नियम का पालन नहीं करना। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर भक्ति रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि दोनों चीजें करना ये भक्ति के लिए हानिकारक है। हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जो उचित नियम हैं हमारे भक्ति के लिए, जो लाभदायक हैं, अनुकूल हैं, ऐसे नियमों को हमें स्वीकार करना चाहिए और पालन करना चाहिए, और इनके उद्देश्य को भी भली भांति जान लेना चाहिए, बीच रास्ता हमारा होना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि सबसे निकृष्ट या सबसे नीचे नीच अवस्था से लेकर सबसे उत्कृष्ट सबसे ऊंचे अवस्था तक बीच के अनेक स्तर होते हैं। जैसे पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक बीच में अन्य कई कक्षाएं होते हैं ना, दूसरे तीसरे इत्यादि, उसी प्रकार से पापी से पापी व्यक्ति एक और, और ऊंचे से ऊंचा भक्त दूसरी ओर, इन दोनों के बीच में भी कई स्तर रहते हैं ना, तो हर एक स्तर के संबंधित नियम होते हैं, विधि और निषेध होते हैं, और जिस स्तर में व्यक्ति स्थित है उसको उस स्तर के नियमों का पालन करना उचित है, आवश्यक है। हर एक स्तर में अलग अलग विधि और निषेध बताए जाते हैं और उनका पालन करना चाहिए। जैसे पहली कक्षा में व्यक्ति बच्चा है उसके विधि निषेध होंगे, जो आठवीं कक्षा में है उसके विधि निषेध कुछ और होंगे। तो हर एक स्तर में जो व्यक्ति है, जैसे जैसे उसकी चेतना का विकास हुआ है, उस हिसाब से उसके लिए शास्त्रों में विधियों और निषेधों का वर्णन है और इनका पालन व्यक्ति को करना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी चेतना का विकास करता है और ऊपर के स्तर में पहुंच जाता है तो उसे निम्न श्रेणी के नियमों को त्यागना चाहिए और ऊपर वाले स्तर के नियमों को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो पहली कक्षा के जो पुस्तक है उनको त्याग कर वो दूसरी कक्षा के पुस्तकों को स्वीकार करेगा। यदि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी कहे मैं तो केवल पहली कक्षा के ही किताबों को बार बार पढ़ूंगा, दूसरी कक्षा की किताबों को नहीं पढ़ूंगा, तो नहीं चलेगा, फिर वो फिर से पहली कक्षा में आ जाएगा। तो हर एक स्तर में जितने भी विधि निषेध हैं उनका पालन करना चाहिए, और जब पालन करते हैं तो हमारी प्रगति अगले स्तर में होती है, तो इसको प्रगति कहते हैं। और आगे वाले स्तर में जब होते हैं तो हम बड़े सोच विचार करके पिछले जो हमारा स्तर था उससे गिने चिने चीजों को, नियमों को हम स्वीकार कर सकते हैं जो हमारे लिए इस स्तर में भी लाभदायक है। जैसे दूसरी कक्षा में आने के बाद पहली कक्षा में जो भी थोड़े अच्छे लाभदायक चीजें सीखी हैं, हो सकता है कि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी उनको फिर से पढ़े या उनका पालन करे, हालांकि अभी वो दूसरी कक्षा में आ गया है। तो ऐसे करते करते व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करते करते प्रगति करता है। हर एक स्तर में विधि निषेध होते हैं और जब व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसका पतन हो जाता है, और जब पालन करता है तो उसकी प्रगति होती है अगले स्तर के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इसको प्रगति कहते हैं, धीरे 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 शुद्ध भक्त की ओर किस स्तर तक पहुंचना। और वो कहते हैं कि दो प्रकार के नियम होते हैं, एक है नित्य नियम और दूसरा होता है नैमित्तिक नियम। नित्य नियम वो है जो हमारे आत्मा से संबंधित है, जो हमारे आत्मा के विकास के लिए है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नियम आत्मा के लिए नित्य नियम है कृष्ण प्रेम, विधि है कि कृष्ण को प्रेम करो, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं निषेध है किसी से ईर्ष्या नहीं करो। बस यही चीजें हैं, नित्य नियमों में से कृष्ण से प्रेम करो और किसी से ईर्ष्या नहीं करो। परंतु जब हम शारीरिक अवस्था में आ जाते हैं और हम उस आत्मा की अवस्था में स्थित नहीं रहते हैं तो हमारे लिए कई और विधि निषेध होते हैं जिनको नैमित्तिक नियम कहते हैं, और ये नैमित्तिक नियम हमारे स्तर के ऊपर निर्भर होते हैं। जब हम नौसुखिया भक्त होते हैं या कर्मी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो हमारे लिए विधि निषेध अलग होते हैं। जो पहुंचे हुए भक्त होते हैं उनके लिए विधि निषेध अलग होते हैं। तो ऐसे ये नैमित्तिक नियमों का पालन करना चाहिए, और पालन करते करते जब ऊपर के स्तर में पहुंच जाएंगे तो निम्न श्रेणी के जो विधि निषेध हैं उनसे केवल उन गिने चिने विधि निषेधों को हम स्वीकार करेंगे जो कि हमारे ऊपर वाले स्तर में हमारे लिए लाभदायक है। आप समझ रहे हैं, स्पष्ट है ना? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे नैमित्तिक अवस्था में भी तीन प्रकार के स्तर होते हैं, एक है कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो जब कोई व्यक्ति पशुतुल्य होता है और धीरे धीरे से वो शास्त्रों को स्वीकार करके भोग को अपने नियमित करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है, तो वो कर्मकांडी कहलाता है, कर्मकांड के स्तर में स्थित होता है। तब उसके पहले जो पशु अवस्था में मनुष्य था लेकिन पशु की तरह भोग करता था, तो उस जीवन के नियमों को उसने त्याग दिया और कर्मकांड के नियमों को स्वीकार किया, विधि और निषेधों को। धीरे धीरे से ऐसे कर्मकांड के नियमों का पालन करते करते उसे पता चला कि नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल संसार में रहना नहीं है, केवल इंद्र तृप्ति करना नहीं है, मुझे संसार से मुक्त होना चाहिए, ये संसार केवल दुख का स्थान है। तब वो ज्ञान के स्तर में स्थित होता है, ज्ञान कांड के सिद्धांतों को स्वीकार करता है और कर्म कांड के सिद्धांतों से केवल उन चीजों को ग्रहण करता है जो कि उसके ज्ञान के लिए अनुकूल है और लाभदायक है। धीरे धीरे भक्तों के संग में आता है, भक्ति करने लगता है। जब भक्ति के स्तर में आता है तो कर्म और ज्ञान कि केवल उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं विधि निषेधों को स्वीकार करेगा जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे कर्मकांड के स्तर में वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना, दशविध संस्कार आदि करना, ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब व्यक्ति ज्ञान कांड के स्तर में पहुंचता है तो उस समय संन्यास आश्रम ग्रहण करना और जड़ पदार्थों और चेतन पदार्थों में अंतर का विश्लेषण करना, विवेक करना, विरक्त होना संसार से, ये सब चीजें ज्ञान कांड में आती हैं। उस समय ज्ञान कांड में स्थित व्यक्ति हो सकता है कर्म कांड की अनेक चीजों को त्यागे, केवल थोड़े महत्वपूर्ण चीजों को रखे। उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति के स्तर में आ जाएगा तो ज्ञान कांड और कर्म कांड के केवल थोड़े थोड़े चीजों को वो स्वीकार करता है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है और लाभदायक है। जैसा कि आप उदाहरण बता सकते हैं, हाँ, जैसे आत्मा और जड़ वस्तु में अंतर का विवेक करना, ये भक्ति में भी हम करते हैं ना, इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे भक्ति के लिए ये आवश्यक है। और क्या? संन्यास जो ज्ञान कांड में लिया जाता है, और वर्णाश्रम जो कि कर्म कर्म के स्थिति में है। हम लोग भी वर्णाश्रम धर्म के थोड़े बहुत सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम लोग भी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी से भक्ति का क्या संबंध है? तो हमने भक्ति मार्ग में वर्णाश्रम धर्म के कई सिद्धांतों को स्वीकार किया है, इंपोर्ट किया है, क्योंकि ये लाभदायक है हमारे भक्ति के लिए। लेकिन कर्मकांड के अन्य सिद्धांतों को हम नहीं स्वीकार करते, ज्ञान कांड के अन्य सिद्धांतों को हम स्वीकार नहीं करते, तो भक्ति मार्ग के विधि विधानों को हम स्वीकार करते हैं। विशेष करके हम वैधि भक्ति के स्तर में हैं, और वैधि भक्ति करते करते जब भगवान के प्रति रुचि जागृत हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में भागवत के कहते हैं, तब इन नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो चुका होता है। उस समय वो वैधि भक्ति के नियमों को त्यागे भी तो कोई दोष नहीं होता, तो उस समय उसे प्रेम भक्ति के विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। जैसे जब हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए थे तो महाप्रभु उनके पास आए और देखा कि अरे हरिदास, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो हरिदास ने कहा कि शरीर तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। महाप्रभु को पता था कि हरिदास ठाकुर का मन बिल्कुल ठीक है लेकिन शरीर ठीक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि वास्तव में मेरा दोष यही है कि मैं मेरी जो नियमित माला है वो नहीं समाप्त कर पा रहा हूं, क्योंकि हरिदास ठाकुर तो 190 से अधिक माला जप करते थे रोज। तो महाप्रभु ने कहा कि हरिदास, माला करने का फल, नियम आदि करने का फल, व्रत धारण करने का फल तो तुम्हें मिल गया, तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, तो अब ये सब व्रत आदि का क्या मतलब है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने नहीं छोड़ा, हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं। परंतु भगवान के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति उस स्तर में आ जाता है, वो जो निम्न श्रेणी के भक्त होते हैं, उनके नियमों को कभी कभी त्याग सकते हैं, परंतु श्रवण कीर्तन ये कभी नहीं त्यागना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, भक्त कितना भी ऊंचा पहुंचा हुआ क्यों ना हो, जितना ऊंचा वो पहुंचा है उतनी ही ज्यादा रुचि उसकी भक्ति के श्रवण कीर्तन के पथ में आएगी। और भले वो इस योग्य हो कि वो निम्न श्रेणी के नियमों का पालन न करे, फिर भी वो पालन करेगा, अच्छा उदाहरण समाज में रखने के लिए। तो ये जो नियम अग्रह नियम आग्रह है कि हम नियमों को स्वीकार करें, नियमों को त्यागें, ये हमारे स्तर के ऊपर निर्भर होते हैं। तो ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं। तो अभी हम भक्ति के स्तर में हैं, तो भक्ति करते करते अन्य जितने भी शास्त्रों में नियम हैं, हम उनको स्वीकार कर सकते हैं उस हद तक जितना कि हमारे भक्ति के लिए अच्छा है, जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बतलाया है वैसे। ठीक है, ये ऊपर लगा देना ताकि सभी लोग देख सके, उसके ऊपर ही लगा देना, कोई बात। तो ये है नियम अग्रह और नियम आग्रह। तो नियम आग्रह क्या है, तुरंत लाभ या आर्थिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को उत्सुकता से स्वीकार करना, स्वीकारना। उदाहरण, कर्म कांड को स्वीकारना या वेदों के विधि विधानों को भोग की दृष्टि से स्वीकारना। नियम अग्रह क्या है, आध्यात्मिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं स्वीकारना। उदाहरण, चार नियमों का पालन नहीं करना और असत्संग स्वीकारना। कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए दोनों प्रकार के नियमाग्रह वर्जित हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि हरि भक्ति विलास में अनेक नियम हैं और उनका पालन कभी कभी नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, यही प्रश्न है ना। हाँ, वैसे हरि भक्ति विलास की रचना गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने की थी, खास करके उस समय को ध्यान में रखते हुए जबकि अनेक स्मार्त ब्राह्मण थे जो स्मार्त विधियों का पालन करते थे और भक्ति के सही सिद्धांत को नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अनेक शास्त्रों से ऐसे विधि विधान भी लिए हैं जो सही हैं, शास्त्रों के हैं। लेकिन प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में एक जगह तात्पर्य में बतलाते हैं कि इसमें खास करके स्मार्त ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए भी, थोड़ा कुछ शांत रखने के लिए भी थोड़ी बहुत विधियां बताई गई थी। दूसरी बात है कि 500 वर्ष पूर्व और आजकल के समय में बहुत परिस्थिति में अंतर हो गया है, इसलिए आजकल के परिस्थिति के अनुसार इन नियमों को हमें देखना चाहिए। विशेष करके जैसे आचार्यों ने देश काल पात्र के अनुसार हमें नियमों का पालन बताया है, उसी तरह से हमें पालन करना चाहिए, विशेष करके जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है। वैसे देखा जाए तो मूलभूत सिद्धांत है और विस्तार है, जो मूलभूत सिद्धांत है वो बदलते नहीं है। तो मूलभूत सिद्धांत उनका वर्णन जो हरिभक्ति विलास में है वो अभी भी पालन करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि थोड़े विस्तार में, थोड़े डिटेल्स में, छोटी छोटी चीजों में अंतर हो सकता है। तो ये कोई गंभीर कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक है, तो हाँ प्रश्न ये है कि कभी कोई व्यक्ति जब बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं तो उनको वैसे निम्न श्रेणी के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो क्या एक द्वंद्व निर्माण नहीं हो जाता उनके जीवन में? हो भी सकता है, लेकिन वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, ऐसे महान वैष्णवों के क्रियाकलापों को समझना मुश्किल है। लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि मैं भी एक ऐसा वैष्णव हूं, अरे वैष्णव को सोचना चाहिए मैं तो एक साधारण ही वैष्णव हूं, मुझे तो सब कुछ ठीक ठाक करना चाहिए। माधवेंद्र पुरी जैसे वैष्णव की बात आती है तो वो अलग बात, या नित्यानंद प्रभु ऐसे कोई है तो फिर बात अलग है। तो यहाँ नियम आग्रह के बारे में और भी चार्ट है क्या इसके पीछे? नियम आग्रह के लिए वो दो है। हाँ, तो नियम दो प्रकार के भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, इसके बारे में हम कह चुके हैं, विधि और निषेध। विधि जो कार्य हमें कर्तव्य समझकर करने चाहिए, और निषेध जो कार्य वर्जित है हमारे लिए। और इसके बाद फिर यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है। और तीसरी बात, शास्त्रों के नियम नैमित्तिक होते हैं और नित्य होते हैं। बद्ध अवस्था के लिए तीन प्रकार के नियम हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म अर्थात वर्णाश्रम संस्कार आदि, वर्णाश्रम धर्म संस्कार आदि। ज्ञान मतलब संन्यास, वैराग्य, विवेक आदि। भक्ति मतलब भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों को करना। तो मुख्य नियम है भक्ति में श्रद्धा, आदो श्रद्धा ततः साधो संग, है ना, कि शुरुआत होती है श्रद्धा से। दूसरी ओर नित्य नियम है जो दिव्य अवस्था के लिए है, कृष्ण प्रेम। एक ही विधि है प्रेम, और एक ही निषेध है ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय क्या हुआ अभी? 3 बज गए, 7:15। ठीक, तो क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से हम मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।